أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم جو نیا چیپٹر ہے اس سے ریویو شروع کی، کتاب الجہاد. میرے خیال اسی اس کو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، رائٹ؟ ابھی تک اس کا نہیں ہوا ریویو، ایسا ہی ہے نا؟ یہ لاسٹ ہم نے ختم کر لیا تھا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کتاب الجہاد سے شروع کریں گے. آج ہماری جو حدیث کی کلاس ہوگی وہ لاسٹ کلاس ہوگی رمضان سے پہلے کی، انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد نیکسٹ ویک سے آپ کو معلوم ہے ٹیوزڈے سے دورہ قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے، ابو سیف صاحب کروایا کریں گے 2:30 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سب کے سب اس دورہ قرآن میں شامل ہوں. تو اسی وجہ سے وہ تو ٹیوزڈے سے شروع ہوگا، لیکن ہماری جو منڈے کی حدیث کلاس ہوتی ہے وہ پھر ہم نے اس لیے نہیں رکھی، کیونکہ نیکسٹ ڈے سے ہی دورہ قرآن ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ ہم اسٹارٹ کریں گے. تو سب کو آگے تک بھی آپ بتا دیں اپنے کانٹیکٹس وغیرہ کو، ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں گے، ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجہاد، جہاد کے مسائل. جی، نو کالرس. اچھا، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کالر نہیں ہے یہاں پہ، کوئی مسئلہ ہوا ہے یا تو. جی، آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور کالرز ہیں اس کے اوپر؟ چلیں، مجھے کچھ پرابلم ہے کیونکہ دیر آر کرنٹلی نو کالرز ان یور کانفرنس، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. چلیں، آپ لائن انمیوٹ کر دیجئے گا، پھر میں یہاں سے کال لے لوں گی انشاءاللہ. جو پہلی سسٹر ہیں ان کی لائن ایڈمنز، جی فرزانہ چودھری، جی ان کی لائن انمیوٹ کیجئے. فرزانہ، آپ بتائیں گی کہ جہاد کس سے نکلا ہے اور اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ وعلیکم السلام.
جہاد جو ہے وہ جہاد ان کی کوشش کرنا، محنت کرنا، اور شریعت میں اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے جتنی بھی ہیں کوشش کرنا، سب اسی میں اسی کے اندر آئے گی.
تو لڑائی کے معاملے میں جہاد کا لفظ بولنے کا پھر کیا معنی بنتا ہے؟
کہ وہ اسلام غالب کرنے کے لیے پہلے آپ اپنی جو بھی کوششیں اس میں یہ بھی آئے، لیکن یہ آخری مطلب آپ کی کوشش ہے. پہلے تو آپ ظاہر ہے اپنے قلم سے جہاد، تو مطلب ہر کسی کا چھوٹی کوشش سے پھر بڑی کوشش آئے گی نا، وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. لیکن عام جو الفاظ بولا جاتا ہے وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے غلبے دین کے، مطلب اس کو غالب کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا.
ٹھیک ہے، شاباش. یعنی جب ہم جہاد کا لفظ سنیں کہیں یا کسی کوئی آپ سے پوچھے اس کا معنی کہ آپ لوگ جنگوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا روٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، اس کے دفاع کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، وہ سب جہاد ہی کہلاتی ہے. اس کے لیے چاہے قلم استعمال ہو، چاہے زبان استعمال ہو، چاہے پھر ان دا اینڈ آ کے چاہے کوئی ہتھیار بھی اٹھانا پڑے، تو پھر بھی وہ کوشش ہی ہے نا، کہ اسی راہ میں جو کوشش کی گئی ہے آخر میں جا کے یہ بھی اٹھایا جائے، تو وہ پھر جہاد میں آتا ہے. مگر پہلے موقع پر ہی ہتھیار اٹھا لینا، اور صرف ہتھیار اٹھانے کو جہاد نہیں کہا جاتا، اس کا معنی بہت محدود کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ لفظ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ آج کل غیر مسلم کافی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کسی کو اسلام کا نہیں بھی پتا ہو تو اللہ کے ان کو بلند کرنے کے لیے، جی किसी को नहीं भी पता हो इस्लाम का, मगर ये लफ्ज जरूर मालूम होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जी नफीसा, आप बताएंगी कि जब किसी के ऊपर हमला किया जाता है, किसी कौम के ऊपर, तो उससे पहले मुसलमानों के लिए क्या जरूरी है, क्या एक काम करना जरूरी है? जी इनकी लाइन खोलें। वालेकुम
वरहमतुल्लाह
अस्सलाम।
वबरकातुह। आपने मुझसे
जी
पूछा
जी जी जी
था जी, सबसे पहले तो आप जंग नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको दावत देनी होगी इस्लाम की ना।
शाबाश जी, इस्लाम की दावत देना जरूरी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को भी इस्लाम की दावत पहले दी थी, उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला किया था। हम पहले देख चुके हैं इस बात को। अच्छा जज़ाकअल्लाह खैरा जी राफिया, जब हम ये देखते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, तो क्या तरीका था जब किसी कौम के पास कोई हाकिम भेजते थे, तो क्या उसको इंस्ट्रक्शन देते थे, क्या तरीका कार अपनाने का हुक्म देते थे?
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वालेकुम
वबरकातुहु।
अस्सलाम
जो
वरहमतुल्लाह।
हाकिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हाकिम अपना भेजते थे खत देकर, कह रही हैं
नहीं खत
या
देके
जो
नहीं,
भी,
वैसे ही जो इंस्ट्रक्शंस उनको देते थे, तो किस तरह की डीलिंग का उनको हुक्म देते थे?
ये उन लोगों के साथ अच्छा रहना और अच्छा इखलास अपना, मतलब जो इखलास है वो अच्छा जाहिर करना उनके पास,
अच्छा,
अच्छाई
और
के साथ रहना उनके साथ, और नरम और दीन की तबलीग करना। जी
ठीक है, और कोई चीज,
जी
और कोई चीज जो अहम हो? लेकिन अच्छा जज़ाकअल्लाह खैरा। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानियां पैदा करने के लिए आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानियों का ही हुक्म देते थे कि आसानियां पैदा करना, लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा करना, लोगों को दीन से नफरत ना दिला देना, ऐसे काम करके या ऐसी चीजें करके लोगों को दीन से दूर नहीं भगाना है, लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए कोशिशें करनी है, ऐसे हालात ना पैदा करो, लोगों को तकलीफ में डाल दें, लोगों को तंग करके रख दें। जैसे आतिशबाज लोगों का तरीका होता है, वो सख्ती के अंदर समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को भी सख्तियां और लोगों को भी मुश्किलात बताना और उनको आसानियां या खुशखबरियां या इस चीज की तरफ नहीं, बल्कि लोगों को मुश्किल से मुश्किल करने के लिए कोशिश करना, कि मुश्किल करेंगे तो उसमें बड़ा अच्छी बात है, हालांकि नहीं आसानियां पैदा करना। मगर अब नेक्स्ट का, नेक्स्ट की लाइन खोलें। आसानियां पैदा करने का मतलब क्या है? आसानियां पैदा करना का कुछ ना करो, ना नमाज पढ़ो, ना कोई और दीन के अहकाम पे चलो, क्या ये आसानियां पैदा कर देना? क्योंकि हम फिर ये सोचने लगते हैं कि आसानी पैदा करने का मतलब ये है। जी कुलसुम आप बताइए, आसानी पैदा करने का
जी
मतलब क्या है?
अच्छा अलहमदुल्ला।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आपने 1162 से रिव्यू करना था, ये तो हम सारा कर चुके हुए हैं पहले। जी
अच्छा ये हम कर चुके हैं। अच्छा मुझे किसी ने बताया नहीं।
आज 1162 से करना था आपने ना।
और जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा ये हम कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा सिर्फ इसका आप बता दें फिर हम आगे चलते हैं। 1160 करना है।
जी बिल्कुल ना।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमारे पास काफी इसका मतलब कवर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सिर्फ इसका बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
जी आपने पूछा आसानी से क्या मुराद है,
हाँ जी, आसानी पैदा करने का क्या मतलब है?
यानी कि आसान रास्ता इख्तियार करना चाहिए किसी को, यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए या कोई किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए जिससे ये असर पैदा हो कि यानी ये बहुत ही मुश्किल दीन है कि कोई इसकी तरफ आना ही किसी को
हाँ,
मुश्किल लगे, जैसे था
लेकिन
ना
मेरा
पिछले
क्वेश्चन
इस
ये है,
मामले में।
राइट, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा ये समझता है कि ये तो बड़ा मुश्किल पैदा कर देना है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हिजाब लो, आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई इस तरह से ये हराम है, ये तो आप बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तो दीन तो कहता है आसानी करो, तो क्या इसके अंदर ये रूल अप्लाई होगा?
जैसे अगर हम देखते हैं किसी को कि वो ये जो चीजें हैं वो नहीं कर पा रहा, तो बजाय इसके कि आप उसको इस चीज के ऊपर रोको या टोको, उसको इसकी तरफ लाना चाहिए, कुरान की तरफ, ताकि वो अल्लाह की पहचान उसके अंदर आए, तो फिर वो खुद ही चीजों के ऊपर वो अमल करेगा, बजाय इसके कि हम उसको पहली दफा में ही ऐसे सख्त बात कहें कि वो इसकी तरफ अगर आना भी चाहे तो वो इससे दूर भागे ना।
बिल्कुल, वो आपकी बात हिकमत की है, वो हिकमत में आती है कि इंसान हिकमत से काम ले। लेकिन जब हम आसानियां पैदा करने का कहते हैं ना, तो इसी हदीस को लेकर बाज लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहते हैं, देखो जी हदीस के अंदर तो ये है, हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं और तुम लोग मुश्किलात खड़ी करने का कहते हो, तो इस तरह से करते हो। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जज़ाकअल्लाह खैर। देखिए, यहाँ पे आसानी पैदा करने का मतलब ये है कि जब दो रास्ते हों, एक रास्ता है बहुत ही ज्यादा, दोनों जायज हैं, दोनों दीन के अहकामात हैं, दोनों एक में ज्यादा बेस्ट वाला तरीका है, एक में उससे थोड़ा सा हल्का है, एक में उससे थोड़ा सा हल्का है, इस तरह, यानी दोनों तरीके ही जायज हों, दोनों ही अल्लाह की रजा के हों, तब उसके अंदर से आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि लोगों को बहुत ही कि देखे, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि देखे फलां जो थे तो औलिया अल्लाह, वो पूरी रात जागते थे और पूरी रात वो कुरान पढ़ते थे और पूरी, अब देखिए एक आम बंदा ये नहीं कर सकता, वो कहेगा ये तो बड़ा मुश्किल दीन है जी, मैं तो बस ऐसे दीन से तो बस फिर मैं तो नहीं ये फॉलो कर सकता, तो वो पीछे हट जाता है। तो यानी हर एक रास्ता हर एक के लिए नहीं होता, इसके अंदर भी स्टेप्स हैं, इंसान एक से शुरू होता है फिर अगले 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 पे जाता है। तो हम लोगों को पहले चाहते हैं वो टॉप की सीढ़ी से स्टार्ट करें, टॉप से वो कर ही नहीं सकते बेचारे। हाँ, उनको उसके शौक तो जरूर दिलाया जा सकता है, मगर उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना और इसको लाजिम कर देना ये सही नहीं। तो दो जब रास्ते हों और उसमें से एक ईजी वाला रास्ता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईज को लेते थे, ठीक है। जज़ाकअल्लाह खैरन, इन्होंने बताया कि 1162 से हमने करना है। अच्छा, हरकल के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खत था, इस बारे में ये जो सारी हदीस आती है, ये वाली हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं सीरत में, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझने में काफी आसानी हुई है। नेक्स्ट लाइन खोलिए कि कौन है नेक्स्ट जी, नेक्स्ट किन का नंबर है, अनम्यूट करें। यास्मीन इकबाल जी, आप मुझे बताएंगी कि हरकल के इस कहने से, कि जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो क्वेश्चन किए के बारे में जो क्वेश्चन किए थे, आपको हरकल के बारे में क्या पता चलता है जी, जिनकी भी लाइन आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मरियम जी, बताइए। अच्छा
देखिए, वो बहुत ज्यादा जो थे बहुत ज्यादा विजडम वाले थे उस जमाने में, किंग्स भी ऐसे ही कोई होते थे जिनको कोई नॉलेज ना हो, बहुत ज्यादा विजडम था उनके। इस
सही
लेटर से पता चलता है कि उन्होंने लेटर ओपन करने से पहले इतने क्वेश्चंस जो किए तो बहुत हिकमत वाले नॉलेज वाले थे।
और क्या पता चलता है उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन से, क्या पता चलता है?
यही कि वो जान गए थे कि ये प्रॉफिट हैं। ये पूछना चाह रही हैं आप
जी जी बताइए।
जी कि जो उन्होंने क्वेश्चंस किए वो सिर्फ यही पता चलाना चाह रहे थे कि ये जो लेटर आया है अगर कोई नबूवत का दावा कह रहा है तो ये बात सही भी है या नहीं, तो इसीलिए उन्होंने पहले क्वेश्चन सारे किए थे उसके बाद लेटर ओपन किया था।
ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये भी इससे पता चलता है, देखें कि इसका मतलब है कि हरकल को दीन का भी इल्म था, और उसको ये भी पता था कि पिछले प्रॉफिट्स के अंदर क्या-क्या खसूसियात होती हैं, यानी जो पिछले गुजरे हैं प्रॉफिट्स, उनकी क्या उनकी सिफात थी, उनके साथ लोगों का रिएक्शन क्या होता था, उनके पीछे कौन लोग जाते थे, ये वही बंदा बता सकता है जो कि खुद भी दीन का इल्म जानता हो, जो जानता हो हिस्ट्री पीछे के, पिछले प्रॉफिट्स के साथ क्या-क्या हुआ। इससे हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि उसको, वैसे तो वो समझदार था ही, जहां दीदा था, लेकिन वो दीन का भी इल्म रखता था। अच्छा जी, अगली नेक्स्ट को लें। ये बताइए कि हरकल को, जबकि उसके सामने वाजे हो चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद वो ईमान क्यों नहीं लेकर आया जी? नेक्स्ट लाइन अनम्यूट करें, नसरीन या जो भी
जी
जिनकी भी बारी है
मेरे
जी 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 नसरीन बताइए।
वालेकुम
वालेकुम सलाम रहमत।
जी वो जान तो गया था क्योंकि उसने सवालात ऐसे किए थे कि इंजील में उनका जिक्र है ना, लेकिन एक तो बच्चा की वजह से, दूसरा उसने जो लोगों को अपने साथ
सबको बंद करके कमरे में वो किया था तो लोग भी भाग गए, तो फिर इसने कहा था कि मेरी बादशाह चली जाएगी।
जी आप देख लें कि बादशाह जजाकला वगैरह कितना बड़ा फितना बन जाती है इंसान के लिए। बाज दफा माल, ओहदे, बादशाहतें, वजारतें, ये एक फितना बन जाती है, क्योंकि वो हक को तस्लीम करने से इसलिए इनकार करता है कि कहीं उसकी कुर्सी ना चली जाए। और आज तक ये चीजें होती हैं कि लोगों को ये होता है कि अगर हम हक का साथ दे दिए तो हम तो जिस जिस चीज को यानी जिसके ऊपर हम थ्राइव करते हैं, जो हमारा एक रैंक है या हमारा एक ओहदा है या हमारी एक वाहवा है, लोगों में पब्लिक हमें इतना मानती है बड़ा, वो सब हमसे छिन जाएगा, तो इसलिए वो हक को मानते नहीं है। और हक सिर्फ ये दीने इस्लाम की बात नहीं है, मुसलमान हो के भी बाज दफा कई हक की बातें, इंसाफ की बात जब उनके सामने आती तो इंसाफ की बात से ही हटे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब हमें फिर ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि बात से ही हटे रहते हैं। नेक्स्ट बताइए मुझे कि इस्लाम में बेसिक चीजें कौन सी हैं जिनसे के यानी जो के एक काफिर को भी पता थी, बेसिक चीजें क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी
जी बेसिक चीजें तो सबसे पहले ईमान है तौहीद के ऊपर
जी,
और ये हर पैगंबर ने हर अपने कौम को ये पैगाम दिया है कि एक अल्लाह पर ईमान लाना है और फिर रसूल पर ईमान लाना है, ये बेसिक है। और यही उन्होंने जो अबू सुफियान से यही जब सवाल किए थे तो जो उनका खत लेके गए थे वही बिन कल्बी जो लेके गए थे खत, तो उनका भी और वो इसीलिए पहचान गया था, उसको पता था ये नबी है क्योंकि उनमें सारी औसाफ उसको समझ आ गई थी, मगर सिर्फ वो बादशाह छोड़ने की वजह से फिर वो मुसलमान नहीं हो सका। और इसके बारे में फिर ये चूंकि ये क्रिश्चियन था तो सूरह आल इमरान में भी इस बात बारे में जिक्र आया 64 आया।
लेकिन अबू सुफियान ने क्या कहा था कि हमें किस चीज का ये हुक्म देता है, यानी वो एक काफिर को भी क्या चीज याद थी कि एक इस्लाम क्या चीज है, उसने क्या इस्लाम का तारुफ कराया?
वो इसने उन्होंने इस तरह इस्लाम का तारुफ किया था कि अच्छी बात का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, एक अल्लाह की इबादत के लिए कहता है, गरीबों की ज़कात के लिए कहता है, ये इस सारे बारे में वो उसने बताया था कि ये
और
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बात का हुक्म देते।
हाँ, और इस्लाम की कुछ बेसिक चीजों का बताया था, बेसिक चीजों का
इस्लाम जी बेसिक चीज तो देखे तौहीद है नंबर वन, फिर ईमान लाना, फिर वो फिर जो हमारी जो ज़कात है गरीबों का हिस्सा देना, पूरे जो हमारे पिलर ऑफ इस्लाम है
सही ठीक है। अच्छा
थोड़ा
अच्छा ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही आपका, लेकिन इसका कंप्लीट जवाब ये होगा, तौहीद का तो हुक्म देते ही हैं लेकिन हमें नमाज का, जकात का, सिला रहमी का और पाकदामनी का, ये बेसिक चीजें हैं जिनसे एक काफिर तारुफ करवा रहा है कि इस्लाम क्या है। जो जाहिर है देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे कुफार को तो कोई चीज उनको कहते थे ना कि भाई इस चीज की तरफ आओ, डिटेल वक्त कोई नहीं ऐसी खास आई थी, कोई बहुत वो बेसिक चीजें, और बेसिक चीजों में से उसको क्या चीज याद थी, वही चीज याद होगी जिसकी बार बार तकरार हुई, जिसके तरफ बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे, और वो क्या थी, नमाज, ज़कात, सिलनी और पाकदामिनी, जिनको ही आज हमने छोड़ दिया। नमाज
और जो आपने अभी बताया था ना वो जो वो मुश्किलात दुश्वारी पैदा करना, जैसे हम लोग जैसे बड़े हो रहे थे तो हमें जैसे ईशा की नमाज चार सुन्नत चार फर्ज दो नफिल वितर इतनी ज्यादा बता देते कि हम लोग फर्ज छोड़ देते
जी,
तो हम ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना।
सही बिल्कुल शाबाश, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया कि जो हमारी नमाज की सारी रकात, बल्कि कई दफा लोग मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये करते हैं, देखें बच्चों को कहते हैं ये इतनी सी बस फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, ये तो अरबों के तरीके पे पढ़ गए, अरबों की क्या नमाज सही है, वो तो बस फर्ज पढ़ के चले जाते हैं। मैंने कहा भाई, और उनको कोई सुन्नतों का ख्याल नहीं, मैंने कहा देखें अगर वो फर्ज पढ़ के चले जाते हैं तो उनकी नमाज अदा हो गई, उनको कोई गुनाह नहीं है, आप तो फर्ज भी छोड़ चुके हैं इस वजह से कि आप लोग इतना कहते हैं कि ये पढ़ो, ये नफल, ये सात सुन्नत, ये सात सुन्नत, इतनी सुनते हैं, इतने नफल करते करते आप वहां तक पहुंचा चुके हैं कि आपकी आधी कौम जो है ना, आधी से भी ज्यादा नमाज ही छोड़ चुकी है, वो इतना डरते हैं नमाज से, कौन इतनी लंबी पढ़े। तो अगर आप कहते हैं अरबों के अंदर ऐसा है, उनको बुरा समझ रहे हैं कि वो लोग कितने बुरे हैं कि वो देखो सुन्नते नहीं पढ़ते, वो उनको देखें कि वो उनकी जो मस्जिदें हैं ना भरी पड़ी होती हैं फर्ज नमाज के वक्त में, फर्ज पढ़ते चले गए, उन्होंने अपने फराइज को पूरा तो कर लिया ना, आप तो फराइज तक भी नहीं पूरा करते, हाँ तो फर्ज नमाज से भी भाग चुके हैं वो, ये सिर्फ हमारी अपनी सख्तियां डालने की वजह से। और उनको फिर वो कहती हैं नहीं वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं, कि देखिए हम तो सुन्नत हैं और वो भी, और लेकिन क्या करें बच्चों को कहते हैं तो वो नहीं मानते, बच्चों को अब इतने लंबे बताएंगे तो वो कैसे मानेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी बहुत अच्छी इन्होंने एग्जाम्पल दी। तो अच्छा नमाज ज़कात सिला रहमी और पाक दामनी, ये चार चीजों को हम याद रखें कि जो इंट्रोडक्शन है इस्लाम का, जहाँ पे हमें ये कोई पूछे तो नकाब से शुरू नहीं कर लेनी बात को, या इस चीज से कोई और दीन की सूद और उनसे शुरू नहीं करनी कि शराब तो हमारा मजहब हराम करता है और ये आपकी कमाइयां हराम है और ये आपको छोड़ना पड़ेगा, इससे नहीं। नमाज ज़कात सिला रहमी और पाकदानी, फिर आप देखें सिला रहमी कितने लोग करते हैं, सिला रहमी से हम कितने इस चीज को छोड़ चुके हैं। फिर पाकदामनी, ज़कात से बचने के लिए इतने क्वेश्चन होते हैं कि हम किसी तरह ज़कात से बस हमारी ज़कात ना हमें देनी पड़े या बहुत कम से कम देनी पड़े, और नाम भी हो जाए कि ज़कात दे दिए। ये हमारा हाल है। अच्छा जी आगे मुझे बताएंगे कि खत लिखने के आदाब क्या होते हैं, खत लिखने का आपने क्या सीखा कि किस तरह से हमें खत लिखना चाहिए, पूरा मुझे बताएं कैसा खत होना चाहिए। जी रास्ता कालिया।
जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद।
वालेकुम अस्सलाम
सबसे
वरहमतुल्लाह।
पहले तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए,
ठीक है
फिर इसके बाद अपना तारुफ हो। हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि आखिर में हम साइन करके अपना नाम लिखते हैं,
जी
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें पता चलता है कि पहले अपना तारुफ हो कि फला फला मैं हूँ, फिर उसके बाद उनके पास सलाम हो, सलाम के बाद अपना जो
नहीं तो
भी
हम तो कहते हैं कि सलाम तो काफिर को आप कर नहीं सकते।
अपना सच सच बयान कर दूं कि मुझे ये बात कहनी है आपसे। इसके बाद आखिर में मुझे लगता है वापस सलाम है क्या है जी।
अच्छा नहीं ये मुझे बताएं, वो तो सलाम तो आप काफिर को कर ही नहीं सकते, तो क्या सलाम लिख दें हम?
नहीं आप दूसरा कुछ लिखते हैं उनके सलाम वाला आप भी अपने नॉन मुस्लिम को।
जो हिदायत की पैरवी करे उसके ऊपर सलामती, तो जो
अच्छा
हिदायत की पैरवी
एक
करेगा तो
सलमान
वो तो जाहिर है
है तो
मुसलमान ही
सलाम हो,
होगा ना।
लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलाम है।
हाँ बिल्कुल इस तरह से लिखना है। और क्या पता चलता है खत से कि बात कैसी होनी चाहिए खत में?
मुख्तसर जामे बात हो, ज्यादा लगी लुपती ना हो, और जो बात कहनी हो बड़ा वाजी और साफ बात कर दी जाए, और मतलब इस तरह की बातें ना हो जो जिसे पढ़ने में इंसान को लगे कि कितना लंबा खत है, मतलब
सही।
खत खत को कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मुख्तसर हो जामे हो।
ठीक है शाबाश जज़ाकअल्लाह खैरन। देखिए आप यहाँ पे के गुफ्तगू भी ऐसी होनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी गुफ्तगू थी वैसा ही खत था। कॉम्प्रिहेंसिव बात, जामे बात और मुख्तसर बात। हम तो बातें करते वक्त भी वो बात अगर एम तक करनी होगी तो ए से स्टार्ट करेंगे और फिर एम तक पहुंचेंगे। अब वो बंदा बेचारा जो उसका सर ही घूम जाता है कि भाई बात है क्या। बाज दफा लोग मसलों के लिए फोन करते हैं, खासतौर पर इस चीज को मेंशन करूंगी, भाई वो मसला है आप मसला पूछे वो इतनी लंबी कहानी होती है कि मुझे यही नहीं समझ आती कि मसला है किधर पे। अब वो कहानी सुनते सुनते ही पहले 1 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद मसला आता है। तो इसलिए इंसान मुख्तसर बात करे ना, दूसरे का टाइम वेस्ट करे ना अपना टाइम वेस्ट करे। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कैसे दो टोक बात की गई, कैसे पैगाम दिया गया। और ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है कि इंसान टू द पॉइंट बात करना जान ले। और हम सोचते हैं कि लंबी हम बात करेंगे ना तो वो बहुत अच्छी बात होगी, हालांकि लंबी बात जब हम फोन पे हमने बात एक करनी होती है और 10 मिनट उससे पहले तम्हीद होती है और 10 मिनट उसके बाद जो होती है अलविदाई होती है और बीच में 1 मिनट की बात होती है, ठीक है? तो वो चीजें नहीं करें। अच्छा दूसरे हम यहाँ पे बहुत अहम बात हमने सीखी है, नेक्स्ट कौन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की जगह हमने जो 786 लिखना शुरू किया उसकी मुझे कुछ बैकग्राउंड बताएंगी आप शहनाज?
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी आप ये अलिफ बा ता की एक तरतीब है, सर ने बताया था इसके बारे में कि ये अबजद से है, और इस मतलब एक तरतीब दिया गया है, इसको नंबरिंग सिस्टम है, और ये जो है जायज नहीं है, मतलब इस्लाम में ये बिस्मिल्लाह की बजाय लिखा जाता है, लेकिन नहीं लिख सकते हम, ये सही नहीं है।
राइट। और मतलब इन्होंने इसकी अच्छा चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको कि तमाम जो
गिनती निकाली थी है
जी
राइट, तावीज में भी लिखते हैं 786
जी
और 890, ये शिर्क कलाम इसमें मतलब लिखा जाता है, तो ये इसकी कोई इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं
जी
है।
देखिए एक तो जज़ाकअल्लाह खैरन शहनाज, एक तो बात ये कि हरूफ जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना उर्दू के सॉरी के, उन सबको एक एक नंबर दे दिया, अल्लाह वालम वो कैसे नंबर देते हैं या क्या, ये इसका ये नंबर बनता है, इस हर्फ का ये नंबर बनता है, और नंबरिंग के साथ वो फिर निकालते हैं कि बा का नंबर क्या, सीन का नंबर क्या, मीम का क्या है, फिर आगे जो भी इस तरह से करके हिसाब निकाल के, तो उसको पूरी कलेक्शन करके 786 बनता है। लेकिन ये तो किसी और बिस्मिल्लाह इस तरह से नहीं भी लिखा हो, किसी और लफ्ज के अंदर यही तरह तमाम हरूफ हों और उनको किया जाए तो उससे भी कोई 786 बन सकता है। अब वो अल्लाह आलम कौन कौन से नंबरों से बन सकता है। अब जैसे सर ने बताया था कि हरे कृष्णा, इस नाम की भी तादाद यही बनती है, तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी के इंसान ऐसी चीजों से हर मुमकिन बच के रहे जिनमें जरा सा भी कोई शिरका शायब हो। अच्छा अब ये देखें कि जो आपने बताया तावीज लिखने, तावीजों के अंदर है ही नंबरिंग, और फिर इसी तरह ये जो कई हिंसों से ही ये जो फ्यूचर की फॉर्चून टेलिंग जो करते हैं, ये कहानत की चीजें, ये भी इन्हीं हिंसों से ही करते हैं, नंबरों से। नंबर का भी एक हिसाब किताब होता है, खाने बनाते हैं उनके अंदर नंबर लिखते हैं, तो ये सारे मामलात जो हैं वे शिर्क की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचना जरूरी है और इन चीजों की अवेयरनेस लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बेचारे भोले लोगों को पता नहीं होता, वो 786 पे ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लोग फेंक देते हैं, दैट्स व्हाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हाँ जी बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि बिस्मिल्लाह लोग फेंक देते हैं इसलिए हम नहीं करते, तो वहां पे उसने भी तो बिस्मिल्लाह को फाड़ दिया था। अब वो तो कौन सा चूम के रखेंगे, वो जो जिन खतूत भेजे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा सकते थे कि भाई काफरों के हाथ को भेज रहा हूँ, क्या पता काफिर बिस्मिल्लाह के साथ क्या करें। आप तो फिर भी जिसको भेज रहे होते हैं अक्सर ही आप मुसलमान को ही भेज रहे होते हैं, 99% टाइम आप मुसलमान को भेज रहे होते हैं, काफिर को तो शायद ही कोई हम में से कोई चीज तहरीर भेजता हो, लेकिन हमें मुसलमान से इतना डर है कि वो बेअदबी कर देगा और वो फेंक देगा, तो वो जो काफरों के पास खत जा रहे थे वो ठीक था, तब कोई समझ की भी बात करनी चाहिए ना। अल्लाह अकबर, बस ये शैतान ने एक डाल दिया कि बिस्मिल्लाह ना ये लिखें और इन्हीं चीजों में पड़े रहे हिंसों में, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम चीजें निकाल के ले आते हैं। अच्छा फिर और हमें इस्लाम का मिजाज भी इस हदीस से पता चलता है कि कौन कौन सी चीजों पे इस्लाम जोर देता है और जिन चीजों को हमने भी भुलाना नहीं है और हमने उनको याद रखना है वो सारे अहकामात का। अच्छा अब इससे क्या जी शकीला आंटी आप बताएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब नसब का कैसे पता चलता है इस हदीस से हमें।
ये जो अबू सुफियान थे जब वहां से हरपल के दरबार से जब वापस आए, तो वो मतलब हरपल के जवाब से उन्हें पता चल गया था कि इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन बादशाह की वजह से इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। तो और जब ये कहा लास्ट बाहर आकर के कि अबू कब्शा के बेटे जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, मतलब उन्हीं की बादशाह
नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब का क्या पता चलता है इस हदीस से, कि आपका नसब कैसा था।
आपका नसब बहुत आला था, तो
लेकिन
इसी
इस
का
हदीस से
जो
हमें
है
कैसे पता चला, वो तो हम वैसे बता रहे हैं ना, लेकिन इस हदीस से हमें कैसे पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब।
ये जो अबू सुफियान ने जो अबू कबशा कह करके वो किया था, उनको मालूम था कि ये अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के ये बेटे हैं, तो
अबू
वो
कबशा
लिहाज
कह के तो अबू
करके
सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर करने की कोशिश की थी।
ऐसे ही करने की कोशिश की थी अबू कबशा का नाम लेके जो आपके रजाई वालिद थे।
अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वो ये कि हरकत ने पूछा था कि उनका नसब क्या है, तो अबू सुफियान ने बताया था कि बड़ा इज्जत वाला नसब है, तो इस पे उसने कहा था हरकल ने कि जो अंबिया होते हैं तमाम अंबिया का हसब नसब बहुत ऊंचा होता है, कौम के जो यानी खानदानी लोग होते हैं उन्हीं में प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, और ये कन्फेशन, ये एतराफ एक काफिर ने अबू सुफियान, उस वक्त कुफर में थे, कि उन्होंने किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही इज्जत वाले नसब से ताल्लुक रखते हैं, और इसे पता चलता है कि तमाम अंबिया ही बड़े हसब नसब वाले लोग होते थे, कभी भी कोई गुलाम नबी नहीं बना। ठीक है, ये अलग बात है कि उनके पास कितनी माल दौलत, ये नसब का मतलब अगर हम समझते हैं ना, मालो दौलत बहुत होना ऐसी जरूरी नहीं है बात, नसब से मतलब ये है कि उनका नसब बहुत ज्यादा इज्जत वाला उस माशरे के अंदर बड़ी उसका देखा जाता था, बड़े यानी उनको लुक अप किया जाता था कि उनका सब नसब बहुत अच्छा है, बहुत खानदानी लोग जैसे हम कहते हैं ना वो थे। ठीक है, तो ये मालूम हमें इसी से हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अच्छा जी, नेक्स्ट आप कौन है जी, इनकी लाइन खोलें। गजवा हुनैन के बारे में हमें क्या पता चलता है इस हदीस से? गजवा हुनैन क्या, कौन सा गजवा था, कब हुआ था ये? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाजिया बताएंगी गज़वा हुनैन के बारे में?
कि बात हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि हुनैन में कुछ मुशरिक लोग हैं जो जमा हो रहे हैं, तो उनकी सरकोबी के लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे सहाबा के साथ।
अच्छा ठीक है, शाबाश। इस जज़ाकअल्लाह खैरन शाजिया। जी जी नाहिद सिद्दीकी जी, आप बताएंगी कि इस गजवे में मुसलमानों को क्या जोम हो गया था?
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
मुसलमानों को ये जो हो गया था कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, हमेशा कम तादाद होती थी और फिर भी जीत जाते थे, दफा इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इनको इस बात का जो हो गया था कि हम तो हमारे पास तो बहुत तादाद थी, उनको ये नहीं पता था कि हमारी जीत और हार अल्लाह के हुक्म से होती है,
सही
तादाद
है,
से नहीं होती।
और तादाद भी ज्यादा थी, और क्या था, दुनियावी असबाब भी ज्यादा थे।
असला असला भी बहुत था,
बिल्कुल
तादाद भी बहुत थी, ऊंट और घोड़े भी बहुत थे, इस बात को समझते थे, माल बहुत था और बहुत ज्यादा वो पावरफुल समझता था, हथियार
सही
बहुत थे उनका।
सही। और इसके नतीजे में फिर क्या हुआ? नेक्स्ट कौन है?
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी इसके नतीजे में फिर क्या
नतीजे में
हुआ
ये
था?
हुआ था कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दुआ की, लोगों को पुकारा, लोग जमा हो गए और फिर ये मुसलमान गालिब आ गए थे।
जी तो शुरू में क्या हुआ था फिर, क्यों भागे क्यों थे?
शुरू में उनको जरा ये एहसास हो चला था कि हम तादाद में ज्यादा है, पता हमें मिलेगी तो यानी हम गालिब होंगे, तो इसी वजह से उनको जरा मुश्किल का सामना करना पड़ा था कसरती तादाद की वजह से।
हाँ वो इस जोम की वजह से, मगर यानी क्या हुआ था, वो क्यों बिखर गए थे, हुआ क्या था उनके साथ?
तादाद की
जी
वजह से
जी
वो
जी इसकी वजह से वो एकदम घबराहट में जैसे पैनिक हो जाता है इंसान, तो वो एकदम यानी भागे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पे सब जमा हो गए थे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी थी। आप ये इसके बयान करने के बारे में, जैसे कि यानी ये बयान की गई है हदीस, उसके बारे में नेक्स्ट कौन है? जी इरम है, जी इरम आप बताएंगी कि हजरत बर्रा बिन आजिब ने जिस तरीके से इस हदीस को बयान किया, जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसे क्या सहाबा कराम ऐसे भाग गए थे, तो उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया था बयान करने का, जिससे हमें क्या सबक मिलता है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सादा।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ये सादा उन्होंने तो थोड़ा सा फेवर में ही बताया था ना कि मुसलमान जो है वो ये रीजन हुई थी जिसकी वजह से वो मुश्तैल हो गए थे, तीरों की वजह से पर्दादारी की थी जैसे।
जी एक तरीका होता है ना बयान करने का भी, तो बेशक वो उन्होंने पूछ तो नहीं फेरी थी, लेकिन उनका बयान करने का तरीका ऐसे था कि जिसमें उनकी भी यानी एक बुराई ना हो, और तरीके के साथ के नहीं, जिसमें उनको एक फेवर देते हुए वो बात की कि यानी उनकी रिस्पेक्ट भी हो जाए और फिर साथ साथ ये भी हक भी बयान हो जाए, तो उनका एक तरीका बताने का उससे हमें ये बड़ा सबक मिलता है कि जब हम कोई बात बयान करने लगते हैं तो ऐसे ना बयान करें कि जिसमें खुदा ना खास्ता सहाबा कराम की कोई डिसरिस्पेक्ट हो, कोई उनके मकाम और मर्तबे से उनको गिरा के कोई बात की जाए या कुछ है, तो वो ना किया जाए। बल्कि इस तरह से बयान, आपने हक बयान भी करना है लेकिन साथ ऐसे करना है कि जिसके अंदर उनका भी एक पर्दा रह जाए। और ये इरम, ये कब हुआ था ये गजवाए? अच्छा, ये तो हो गया कि गजवाए जो है वो इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट आप बताएं जी अमरीन, आप बताएं कि गजवाए ताइफ ये इसमें क्या हुआ था, ये कौन सा गजवा था?
हाँ जी, ये अलहमदुल्ला ये
वालेकुम
गजवा
सलाम।
हुनैन के बाद हुआ था, और जो लोग हुनैन से भाग गए तो वो ताइफ में उन्होंने किला बंद हो गए थे। वो
अच्छा।
उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी हिदायत के लिए दुआ की थी और
तो इसमें जंग हुई थी क्या?
मुसलमानों, नहीं इसमें जंग नहीं हुई थी।
सही, शाबाश। ये तो इसके अंदर जंग नहीं हुई थी, सिर्फ मुहासरा हुआ था। ये गजवाए ताइफ कहलाता है, वरना वैसे आप देखें ताइफ से हमें लगता है कि जैसे शायद ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे उस वक्त ही कोई बात है, ये उस वक्त की बात नहीं, ये बहुत बाद की बात है। ठीक है। अच्छा, फिर हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमराए कजा के लिए गए थे, तो फिर उस वक्त क्या सिचुएशन थी काबा की, वो जरा कोई बयान करेगा? नेक्स्ट। वालेकुम
अस्सलाम
सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम। उस टाइम पे ये था कि सारे बुत से भरा हुआ था काबा, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उसको इग्नोर करके अपना उम्रा किया, क्योंकि अब तक गालिब नहीं आए थे मान, तो इस चीज को इग्नोर करके आपने बस
तो
अपना
इससे
काम
आपको
किया।
क्या समझ में आता है, आपको क्या सबक मिलता है इससे?
इससे यही समझ आती है कि अगर आप गालिब नहीं है तो आपको, अगर इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, ठीक है आप दिल में रखे, आपको नहीं पसंद है, पर आप रिएक्शन नहीं शो कर सकते। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, जैसे आप काफिर मुल्क में रहते हैं, आपको वहां के तौर तरीके नहीं पसंद, तो दैट डजंट मीन आप जाके उन पे हमले करने लगे और ये सब। तो जब तक आप गालिब नहीं आते तो तब तक जो है आप अपना करें, काम करें, और जितनी तबलीग आपसे हो सकती है करें, पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही यू नो आउट ऑफ कंट्रोल हो
सही
जाके
सही,
सबको मारने लगे, हम ये
शाबाश।
सब नहीं कर
ठीक है। अब
सकते।
हमें जब तक देखिए इनसे हम अपनी जो अपनी जो डेली लाइफ है उसके लिए कोई लेसन नहीं लेते ना, उस वक्त तक फिर वो हम सही हदीस को उस तरह से फायदा नहीं उठा पाते। अब हमें कितना खूबसूरत लेसन इससे मिलता है कि देखिए ऐसी चीज को देख कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि कितनी नागवारी की बात है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद के आलम बरदार हैं, जो लेके ये मैसेज आए और जो इनके दुश्मन हैं इन बुतों के, लेकिन फिर भी वहां पे बर्दाश्त किया, वहां पे उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे उमरा फरमाया, और यानी बुतों के बावजूद, इतनी नागवार चीज के बावजूद कोई ऐसी चीज नहीं की कि वहां पे ये सोच लिया, और जैसे किसी ने कहा भाई इब्राहिम अलैहि सलाम ने बुत तोड़े थे तो चलो मैं भी अब बुत तोड़ूंगा, और या मैं कुछ अब यहाँ पे कोई तखरीबकारी, कोई कोई और चीज ऐसी दहशतगर्दी करूं कि जिससे ये सब टूट फूट जाए और सब खत्म हो जाए, हालांकि ये हमारे दीन के खिलाफ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है दीन के खिलाफ, है ना? और जी काबा, एक काबा है ना जो अल्लाह का घर जो सिया रंग के गिलाफ में है, उसके अंदर नहीं थे बुद्ध, बाहर थे, नहीं जैसे सेहन में काबा के, इर्द गिर्द काबा के, इस तरह वजह। जी ठीक है ना। तो इससे हमें ये बहुत एक बड़ा सबक मिलता है कि जो नागवार चीजें हम देखते हैं जिस वक्त हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम हमारे पास तो इस वक्त देखिए दुनिया में उस तरह से, खास तौर पे जो मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्कों में रह रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई एज सच अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो इन चीजों को खत्म कर सके जो वो अपने करीब देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो खुद कुछ हमले शुरू कर दें या कोई ऐसी चीजें तखरीबकारी की शुरू कर दें। अपने तौर पे पावर हासिल करने की कोशिश करें ताकि उन मुल्कों के अंदर उनकी कोई से हो सके, ताकि इस नियत के साथ ताकि इनके कवानीन को बदला जा सके, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये पता चलता है कि उस वक्त नहीं, जब आपके पास पावर नहीं और आप ये काम शुरू कर दें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा उस वक्त करते तो कितने बिगड़ जाते हालात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पावर लेने की पहले कोशिश की, फिर उसके बाद चीजों को चेंज किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक ही हम करते हैं। आगे का सुलह हुदैबिया हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी सीरत में, वहां से इंशाल्लाह आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और ये एक तरह से रिव्यू आपका यहाँ पे हो गया, उहद का भी हम पढ़ चुके हैं वहां पे। तो इंशाल्लाह ताला अब हम ज्वाइन करते हैं जाके हदीस क्लास को। तो यहाँ तक हम अपना रखेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ फिर अगले हफ्ते तो नई क्लास होगी रमजान के बाद, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होती है हदीस क्लास में। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा
الله وبركاته
शेयर करना।